स्वागत है। आज हम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही अहम किताब उत्कर्ष के लिए स्वयं आगे बढ़ें, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये गायत्री परिवार की संस्थापिका भी हैं, जैसा कि कई लोग जानते होंगे। तो इस विश्लेषण में हमारा मकसद है कि नारी उत्कर्ष के लिए, मतलब महिलाओं की प्रगति के लिए, जो मुख्य संदेश और जो प्रैक्टिकल सुझाव इस किताब में दिए हैं, उनको जरा समझें।
तो वंदनीय माता जी का जो मूल विचार है वो ये कि महिलाओं को अपने विकास के लिए, समाज में अपनी सही जगह पाने के लिए खुद ही पहल करनी होगी।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं। वंदनीय माता जी कहती हैं कि नारी जागरण में सबसे प्रधान भूमिका स्वयं नारी की है, लेकिन अक्सर एक झिझक आड़े आ जाती है ना, एक तो पुरानी आदतों के कारण और दूसरा समाज के डर से। इस पर आप क्या सोचते हैं, मतलब ये झिझक कितनी रियल है?
सिर्फ एक वहम, एक भ्रांतिपूर्ण चीज मानती हैं। उनका कहना है कि नारी का जो स्वभाव है वो मूलतः चेतना रूप है, मतलब उसमें अंदर से ही ज्ञान और शक्ति है, और बड़े से बड़े बदलाव को भी वो कहती हैं बड़ी सहजता से अपनाने की उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे एक बेटी जब बहू बनकर जाती है तो एक बिल्कुल नए जीवन को अपना लेती है।
बिल्कुल।
तो वो कहती है कि युग परिवर्तन का समय है, अब पुरानी रूढ़ियां, पुरानी सोच वो टिक नहीं सकती।
ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली विचार है कि झिझक सिर्फ एक वहम है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए किताब में ये भी साफ किया गया है कि नारी का जन्म सिर्फ, मतलब किसी की इच्छा पूरी करने या पेट भरने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद है, परिवार जो एक संस्था है उसका सही संचालन करना और उसे उन्नत बनाना।
बिल्कुल सही कहा। परिवार को व्यक्ति और समाज निर्माण के बीच की, आप कह सकते हैं, सबसे अहम कड़ी बताया गया है, और इस निर्माण में वंदनीय माताजी मानती हैं कि नारी की भूमिका पुरुष से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, कहीं ज्यादा। वो नारी को परिवार की रचना, पोषण और सुधार, इन सब में समर्थ मानती हैं। उसे एक तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सम्मिलित देव शक्ति जैसा कहा है।
अच्छा।
और ये जो गृहलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि गृहलक्ष्मी असल में वही है जो अपने मधुर स्वभाव से, अपने व्यवहार से घर में शांति और सद्भाव लाती है।
तो ये परिवार संभालने की बड़ी जिम्मेदारी हुई। इसके साथ साथ क्या वंदनीय माताजी व्यक्तिगत विकास, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास, उस पर भी जोर देती हैं?
हाँ बिल्कुल। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो वो साफ कहती हैं कि अनियमितता, तनाव, आलस्य, ये सब छोड़ना होगा, और आहार विहार, मतलब खान पान और जीवन शैली, उसमें अनुशासन जरूरी है। और मानसिक विकास के लिए, उसके लिए तो शिक्षा को सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर, यहाँ तक के वस्त्र आभूषण से भी ज्यादा जरूरी।
शिक्षा को?
हाँ, शिक्षा को। वो कहती हैं कि जो अशिक्षित हैं उसका ज्ञान सीमित रह जाता है, जबकि शिक्षा से क्या होता है, दुनिया भर के ज्ञान का दरवाजा खुल जाता है, उसका लाभ मिलता है
जी।
और सिर्फ साक्षर होना, मतलब अक्षर ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उपयोगी साहित्य पढ़ के, अच्छी किताबें पढ़कर ज्ञान बढ़ाते रहना जरूरी है।
और ये शिक्षा से जो समझ आती है, शायद वही आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है ना। वंदनीय माता जी का ये कहना कि महिलाओं को पुरुषों के सहयोग का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्म विकास के लिए स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, ये इसी से जुड़ता है?
हाँ बिल्कुल जुड़ता है। उनका साफ कहना है कि आत्मनिर्भर यानी अपना विकास और परिवार निर्माण, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं
जी।
एक के बिना दूसरा अधूरा है, और इसके लिए उन्होंने कुछ ठोस, मतलब प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए हैं।
जैसे कि?
क्या कदम है वो? जैसे घरों में लड़के लड़कियों का जो भेदभाव होता है उसे खत्म करना, पर्दा प्रथा, खासकर घर के भीतर जो होती है उसे समाप्त करना, आभूषणों का मोह कम करना। इसके तो उन्होंने आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों तरह के नुकसान बताए हैं।
अच्छा।
फिर फैशन के नाम पर जो भोंडापन आ जाता है कभी कभी, उससे बचना, और घर में पूजा उपासना, प्रेरणादायक कहानियां, इनके जरिए एक अच्छा धार्मिक और नैतिक माहौल बनाना। एक और सुझाव है साप्ताहिक परिवार गोष्ठियां, मतलब हफ्ते में एक बार सब मिलकर बैठें, बात करें।
ये तो घर के अंदर के बदलाव हुए। स्वावलंबन के लिए, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, क्या कुछ व्यावहारिक हुनर की भी बात है?
जरूर जरूर। गृह उद्योग जैसे सिलाई कढ़ाई, मरम्मत का काम, या घर में ही छोटी सी शाक पार्टी का, मतलब सब्जी बाड़ी लगा लेना, इन सब का जिक्र है। इनसे स्वावलंबन में मदद मिलती है। और हाँ, इसके साथ ही कुरीतियों के उन्मूलन पर भी बहुत जोर है।
कुरीतियां? जैसे?
जातिगत भेदभाव, मरने पर जो भारी भरकम भोज करते हैं वो, टोना टोटका जैसे अंधविश्वास, इन सबको समाप्त करने में नारी की सक्रिय भूमिका देखती हैं वो। उनका ये मानना था कि ये जो कुरीतियां हैं ना, ये ज्यादातर नारी समाज का ही सहारा पाकर जिंदा रहती हैं, या तो उनके चुप रहने से या कहीं ना कहीं साथ देने से।
तो मतलब व्यक्तिगत प्रयास तो करना ही है, साथ में समाज सुधार की भी जिम्मेदारी है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई, क्या ये सब अकेले अकेले हो सकता है?
नहीं, यहीं पर वंदनीय माताजी संगठन की शक्ति पर जोर देती हैं। वो साफ कहती हैं कि ये महान अभियान अकेले नहीं चल सकता, ये संगठित रूप से ही चल सकता है। इसलिए वो महिला शाखाएं बनाने, सत्संग करने, सामूहिक रूप से पर्व त्योहार मनाने और एक ज्ञान घट जैसी पहल का जिक्र करती हैं।
ज्ञान घट, ये क्या है?
हाँ, ज्ञान घट मतलब एक तरह का ज्ञान का घड़ा या पॉट, एक पहल जहां महिलाएं मिलकर ज्ञान या अच्छी बातें साझा करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं, तो इन सबसे जुड़ने का वो आह्वान करती हैं। उनका कहना है कि नारी को संघर्ष और सृजन यानी बुराई से लड़ना और अच्छाई का निर्माण करना, इन दोनों ही मोर्चों पर सक्रिय होना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो वंदनीय माताजी का मुख्य संदेश बहुत साफ है, नारी का उत्कर्ष, उसकी प्रगति उसके अपने हाथ में है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, कुरीतियों का उन्मूलन और संगठित प्रयास, ये इसके आधार हैं। उसे अपनी झिझक छोड़कर अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करके स्वयं आगे बढ़ना होगा। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल या एक विचार आ रहा है कि वंदनीय माताजी ने जिन बाहरी और भीतरी रुकावटों की बात की, उनके अलावा आज के समय में वो कौन सी नई या शायद अनदेखी बाधाएं या मान्यताएं हो सकती हैं जो महिलाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आत्मोत्कर्ष की राह पर आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोक रही हैं। इस पर सोचना चाहिए।